नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और नए साल के इस पहले दिन में हम आपका स्वागत करते हैं। आप सभी सुनने वालों को नूतन वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हूं मैं आपके साथ धर्मेंद्र, और हमारे मेहमान हैं जाने माने खेल पत्रकार रणवीर सिंह। रणवीर, स्वागत आपका।
धर्मेंद्र, आपको और सभी सुनने वाले लिसनर्स को मेरा भी नववर्ष का नमस्कार और शुभकामनाएं।
और रणवीर, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल, नई उम्मीदें और कहें कि नई आशाएं। खेल की दुनिया में पिछले साल हमने बहुत कुछ किया, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। अब नए साल में नई चुनौतियां हैं। अगर हम खेलों की बात करें तो हमने शतरंज में पिछले साल बहुत बढ़िया किया। नए साल की शुरुआत हमने बहुत बेहतर तरीके से की है, क्योंकि ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट में वुमेन्स कैटेगरी में वैशाली ने
ब्रॉन्ज मेडल जीता है,
तो
जीत करके एक अच्छी शुरुआत तो दी है।
तो बहुत सारी उम्मीदें हैं इस नए साल में। आपको क्या लगता है कि नया साल कैसा रहने वाला भारतीय खेलों के लिए? अब
जैसा पिछला साल था, जैसे ओलंपिक गेम्स भी हुए पेरिस में, जिस तरह से मनु भाकर ने शूटिंग में 2 मेडल जीते, एक नई चैंपियन बनी, नया इतिहास गढ़ दिया। और शूटिंग की अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, यहाँ नेशनल चैंपियनशिप चल रही है इन दिनों, दिल्ली के तुगलकाबाद शूटिंग रेंज में शॉटगन और पिस्टल मुकाबले हो रहे हैं, जबकि भोपाल में राइफल के मुकाबले हो रहे हैं। वो इसलिए करना पड़ रहा है दो शहरों में, क्योंकि रिकॉर्ड नंबर ऑफ एंट्रीज आ रही हैं। इस बार 13,522 शूटर्स खेल रहे हैं, जिसमें 8,000 से ज्यादा तो राइफल में है और बाकी पिस्टल में 5,500 और 900 के करीब शॉटगन में। लेकिन धर्मेंद्र, एक चीज कहूंगा कि इतना टफ कॉम्पिटिशन दिन पर दिन शूटिंग में हो गया है, हिंदुस्तान की शूटिंग की बात कर रहा हूं, कि फाइनल में पहुंचने के लिए शूट ऑफ हो रहे हैं और 10-10, 15-15 शॉट का शूट ऑफ के बाद तय हो रहा है कि ये प्लेयर आगे जा रहा है।
तो रणबीर, आपके कहीं ना कहीं संकेत ये है कि शूटिंग में जो हमारा झंडा बुलंद हुआ ओलंपिक में, ये सिलसिला आगे भी मजबूती से जारी।
बिल्कुल, नए शूटर्स चैंपियन बन रहे हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा है।
जी, हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे तमाम खेल खबरों पर, लेकिन पहले अब सुर्खियां। न्यूयॉर्क में आर वैशाली ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में इस समय शाची राढ़ बंगाल टाइगर्स और टीम गोनासिका के बीच मुकाबला जारी। आईएसएल में कल कोलकाता में मोहन बागान सुपर जायंट का मुकाबला हैदराबाद एफसी से होगा। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट मैच से पहले आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। शुरुआत करते हैं शतरंज से। न्यूयॉर्क में भारत की आर वैशाली ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में पराजय के बावजूद उन्हें कांस्य पदक मिला। सुनते हैं रिपोर्ट।
शतरंज की बिसात पर भारत के धुरंधरों का जलवा जारी है। पिछले साल शतरंज ओलंपियाड के दोनों वर्गों में परचम लहराने के बाद डी गुकेश ने विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया, तो महिलाओं की रैपिड स्पर्धा में कुनेरू हम्पी के विश्व खिताब जीतने के बाद अब आर वैशाली ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में शानदार उपलब्धि हासिल की। वे चीन की झू जिनर को क्वार्टर फाइनल में 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची थी। पूरे टूर्नामेंट में वैशाली ने शानदार खेल दिखाया। उनकी उपलब्धि की तारीफ 5 बार के विश्व चैंपियन नाथन आनंद ने भी की। इस प्रतियोगिता में पूरी तरह से चीन के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। चीन की जू वेंजुन ने अपने ही देश की लेई टिंगजी को हराकर विश्व खिताब जीता। ओपन वर्ग में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन और रूस के इयान ने ब्लिट्ज खिताब साझा किया, क्योंकि सडन डेथ की 3 बाजियों के बाद भी कोई स्पष्ट विजेता नहीं बन पाया। ये पहला अवसर है जबकि खिताब 2 खिलाड़ियों के बीच बांटा गया। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
भारतीय शतरंज की बात करते हैं, जिस पर कि हम चर्चा भी कर रहे थे। पिछला साल तो सपनों सरीखा रहा, क्योंकि अगर हम शतरंज ओलंपियाड की बात करें, वहां दोनों कैटेगरी में हमने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद अगर हम गुकेश की बात करते हैं, वो वर्ल्ड चैंपियन बने, और अब
जी 2 दिन पहले
कोनेरू हम्पी ने कमाल किया और अब वैशाली ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया है। शतरंज की बिसात पर जो दिमाग का खेल है, ऐसा लगता है कि इस दिमागी खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने बिल्कुल अपनी दुनिया पर पकड़ बना ली है।
कहा भी जाता है हिंदुस्तान का जो भी व्यक्ति है बाहर जाता है वो औरों से अच्छा करता है।
जी,
जैसे यूएस में तमाम जो है वहां के स्टूडेंट्स वो नहीं कर पाते हैं, जो हिंदुस्तान के गरीब घरों के बच्चे बीटेक करके जा रहे हैं, एमटेक करके जा रहे हैं, और वहां नासा में पता लगा 70% जो है इंडियंस बैठे हुए हैं। तो ये दिमाग का खेल है और दिमाग के खेल में हिंदुस्तानियों से आगे कोई नहीं है।
जी, और डी गुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद वर्ल्ड चैंपियन बने। मेंस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, गुकेश ने इतनी कम उम्र में इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो दिन हैं वो गुकेश के लिए काफी बेहतर रहने वाले हैं। और उनके साथ साथ एक जो सिलसिला है वो भी काफी लंबा है भारतीय शतरंज।
विश्वनाथन आनंद और कोनेरू हम्पी के बाद जो बेंच स्ट्रेंथ थी वो बेंच स्ट्रेंथ अब लय में आ गई है, हालांकि कोनेरू तो अभी भी खेल रही है, तो कोनेरू जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियन बनी और डी गुकेश जो है वो 18 साल की उम्र में चैंपियन बने, उन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले मैंने ये तय कर लिया था मुझे 18 की एज तक वर्ल्ड चैंपियन बन जाना है। अगर जिस आदमी का जिस खिलाड़ी का इतना तगड़ा जीवट है तो फिर वो उसके लिए तो रहा बहुत आसान
जी। और अर्जुन एरोगेसी की बात करें, विदित गुजराती की बात करें, ये भी उसी आसपास में बहुत ज्यादा अंतर है नहीं।
बिल्कुल।
और अब चलते हैं शतरंज से हॉकी की तरफ। ओडिशा के राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में इस समय सांची राड बंगाल टाइगर्स का मुकाबला टीम गोनासिका के साथ चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर हैं। फिलहाल अंक तालिका में सांची राड बंगाल टाइगर्स 3 अंकों के साथ दूसरे और टीम गोनासिका 1 अंक लेकर 6ठे स्थान पर है। इससे पहले कल हैदराबाद तूफान्स ने डेली एसजी पाइपर्स को शूट आउट में 5-4 से हराकर बोनस अंक हासिल किया। दोनों टीमें निर्धारित समय तक 2-2 की बराबरी पर थी। फुटबॉल की तरफ अब चलते हैं। इंडियन सुपर लीग आईएसएल के 15वें सप्ताह की शुरुआत कल कोलकाता में मोहन बगान सुपर जायंट और हैदराबाद एफसी के बीच मुकाबले से होगी। ये मैच विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला जाएगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
मोहन बगान सुपर जायंट 13 मैचों में 29 अंकों के साथ अंक तालिका में पहले स्थान पर हैं, जबकि हैदराबाद एफसी 13 मैचों में केवल 8 अंक लेकर 12वें स्थान पर संघर्ष कर रहा है। मोहन बगान ने अपने पिछले 5 मैचों में से 4 में जीत दर्ज की है, वहीं हैदराबाद एफसी ने पिछले 5 में से 4 मैच हारे हैं और 1 ड्रॉ किया है। ये इन दोनों टीमों के बीच 14वां आईएसएल मुकाबला होगा। पिछले 5 मैचों में मोहन बगान हैदराबाद एफसी के खिलाफ अजेय रहा है, इसमें से 3 मैच उसने जीते हैं जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। इन सभी मैचों में मोहन बगान ने विपक्षी टीम हैदराबाद एफसी को गोल करने का मौका नहीं दिया। इस सीजन दोनों टीमों का प्रदर्शन बिल्कुल अलग रहा है। मोहन बगान ने हर मैच में विपक्ष के डिफेंस में औसतन 24.1 बार गेंद पहुंचाई है, जो लीग में सबसे ज्यादा है। वहीं हैदराबाद एफसी का औसत सबसे कम 15.4 है। मोहन बगान ने अपने घर में लगातार 5 मैच जीते हैं, जो उनके आईएसएल इतिहास की सबसे लंबी जीत की बराबरी है। इस जीत में उनकी मजबूत डिफेंस का भी बड़ा योगदान रहा है। डिफेंडर आशीष राय ने इस सीजन 24 बार विपक्षी हमलों को रोका है, जो उनके बेहतरीन डिफेंस का उदाहरण है। दूसरी तरफ हैदराबाद एफसी पिछले 2 अवे मैचों में गोल नहीं कर पाई है। अगर इस मैच में भी वे स्कोर करने में असफल रहे तो ये उनके लिए एक ही सीजन में सबसे खराब प्रदर्शन होगा। हालांकि मोहन बगान सुपर जायंट्स हैदराबाद एफसी की मौजूदा स्थिति को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है और उसका ध्यान पूरी तरह से अपने खेल पर है। टीम इस मैच को आसान नहीं मान रही और कड़ी मेहनत के लिए तैयार है। वहीं हैदराबाद एफसी ने मैच में अपने खेल को धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई है। टीम की नजर इस अहम मैच में अटैक के साथ डिफेंस पर भी है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
फुटबॉल के सिलसिले को अगर आगे बढ़ाएं तो पश्चिम बंगाल ने 78वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए संतोष ट्रॉफी का खिताब जीत लिया। हैदराबाद में कल खेले गए फाइनल में उसने केरल को 1-0 से हराया। सुनते हैं रिपोर्ट।
बंगाल ने अपना दबदबा कायम रखते हुए 33वीं बार संतोष ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। कांटे के मुकाबले में बंगाल ने केरल को शिकस्त देकर 7 साल के बाद फुटबॉल का राष्ट्रीय चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। ये मैच काफी चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि दोनों टीमें गोल करने के लिए संघर्ष करती रहीं। चोटिल होने के कारण बंगाल के प्रमुख स्ट्राइकर नारो हरिश्रेष्ठा नहीं खेल पाए, जबकि केरल के हमलों में सटीकता की कमी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि मैच का फैसला निर्धारित समय में नहीं हो पाएगा, लेकिन दूसरे हाफ के अतिरिक्त समय में आदित्य थापा ने हेडर से गेंद को बॉक्स में पहुंचाया, जिसे रॉबी हंसदा ने आसानी से गोल में तब्दील कर दिया। दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में अपने कद के अनुरूप फॉर्म दिखाया और अपने खिताबी मुकाबले के सफर के दौरान 10 मैचों में से 9 जीते और 1-1 ड्रॉ खेला। ऐतिहासिक रूप से बंगाल ने इस प्रतियोगिता में दबदबा बनाया है। 7 बार के विजेता केरल ने हालांकि फाइनल में बंगाल को हराकर 2017-18 और 2021-22 का खिताब जीता, लेकिन बंगाल ने कल एकमात्र गोल से जीत हासिल कर बदला चुकता किया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक 12 गोल करने वाले हंसदा को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों का सम्मान दिया गया। रवि कपूर, स्पोर्ट्स कैन।
जब बात फुटबॉल की आती है, पश्चिम बंगाल के फुटबॉल की चर्चा हमेशा होती है और केरल का फुटबॉल भी बहुत मजबूत रहा है। दो टीमों के बीच राष्ट्रीय संतोष ट्रॉफी के लिए यह मुकाबला जबरदस्त मुकाबले की जिसकी उम्मीद थी बिल्कुल वही देखने को मिला।
कह सकते हैं क्योंकि बंगाल तो गढ़ है
जी,
वहां मोहन बगान, ईस्ट बंगाल और मोमडन स्पोर्टिंग 3 बड़ी टीमें हुआ करती थी। पिछले 15-20 साल पहले से केरला ने जिस तरह से एक हाइट पकड़ी है फुटबॉल में, तो फाइनल भी दोनों के बीच हुआ टॉप की दो टीमें फाइनल खेल रही थी और जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया, मोहन बागान ने अपना पिछला बदला भी चुका लिया और संतोष ट्रॉफी पे रिकॉर्ड 33वीं बार कब्जा किया। जैसे रणजी ट्रॉफी में मुंबई का हमेशा मैक्सिमम होता है, 41-42 बार वो रणजी ट्रॉफी चैंपियन बन चुके हैं
जी। वैसे ही पश्चिम बंगाल, मोहन बगान नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल ने अपनी जो है बादशाहत एक बार फिर दिखाई है और ये दिखाया है कि चाहे फुटबॉल की आप कितनी भी बात कर लें,
बहुत जबरदस्त
जी, और वहां पर जो खेलों की एक संस्कृति है और वहां पर जो खेलों का एक सिलसिला है वो जबरदस्त है।
मेरे ख्याल से इसका एक रीजन लिटरेसी रेट भी हो सकता है, वहां का लिटरेसी रेट यूपी बिहार से ज्यादा, ये तो हम मान नहीं सकते हैं, तो वो भी एक वजह होती है। जैसे कोई भी बच्चा छोटा होता है तो उसको शुरुआत में, जैसे लड़की है अगर घर में, तो उसको कोई ना कोई संगीत वाद्य सिखाया जाता है या डांस सिखाया जाता है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पेरेंट्स बच्चों को डालने में यकीन रखते हैं
जी। तो अब लौटते हैं फुटबॉल से बैडमिंटन की तरफ। पिछले साल मिले जुले नतीजों का सामना करने के बाद भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी नए साल के लिए उत्साह के साथ तैयार हैं। सीजन की शुरुआत मलेशिया ओपन और इंडिया ओपन के साथ होने जा रही है, लेकिन खिलाड़ियों की मुख्य नजर ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप और विश्व चैंपियनशिप पर होगी। सुनते हैं रिपोर्ट ज्योत्सना से।
भारतीय शटलरों ने 2024 BWF वर्ल्ड टूर में कुल 5 खिताब जीते, इनमें से एक एक पुरुष और महिला सिंगल्स में, 2 पुरुष डबल्स में और 1 महिला डबल्स में आए। नए सत्र की शुरुआत एशियाई स्विंग के साथ होगी क्योंकि मलेशिया ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट 7 जनवरी से कुआलालंपुर में शुरू होगा। इसके बाद इंडियन ओपन 750 टूर्नामेंट 14 से 19 जनवरी तक देश की राजधानी दिल्ली में खेला जाएगा। इंडोनेशिया मास्टर सुपर 500 प्रतियोगिता 21 से 26 जनवरी तक और थाईलैंड मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट 28 जनवरी से 2 फरवरी तक खेला जाएगा। इसके साथ एशियाई सर्किट का समापन होगा। इसके बाद यूरोप में मुकाबले शुरू होंगे। यूरोपीय लीग की शुरुआत बर्मिंगम के यूटिलिटा एरिना में 11 से 16 मार्च तक चलने वाले दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑल इंडिया ओपन से होगी। चीन के निगम्बो में 8 से 13 अप्रैल तक बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। BWF विश्व चैंपियन 25 से 31 अगस्त तक पेरिस में आयोजित की जाएगी। भारत ने 1983 से 2023 तक चैंपियनशिप में 14 पदक जीते हैं। कई शीर्ष भारतीय शटलर 2025 में प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड ओपन और विश्व चैंपियनशिप सहित प्रमुख खिताब जीतने का लक्ष्य बना रहे हैं। ऐसे में यह साल भारतीय बैडमिंटन के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछली सफलताओं और मौजूदा चुनौतियों से उत्साहित खिलाड़ी विश्व बैडमिंटन में भारत की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक देंगे। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए ज्योत्सना पांडे।
जैसा कि हमने ज्योत्सना की इस रिपोर्ट में सुना, पिछला साल कुल मिलाकर ठीक ठाक कहा जा सकता है क्योंकि 5 खिताब हमारे खिलाड़ियों की झोली में आए, लेकिन पीवी सिंधु की बात करें, लक्ष्य सेन की बात करें, ये जो नामी गिरामी खिलाड़ी हैं ये कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से थोड़े से पीछे छूटते हुए दिखाई दिए। आपको लगता है कि नया साल नई उपलब्धियां इनके लिए भी लेकर आएगा?
हाँ, बिल्कुल लेकर के आएगा। और लक्ष्य सेन की बात करें तो आपको हमको ध्यान है जिस तरह से सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने बहुत कड़ी चुनौती दी थी ओलंपिक्स में, वरना वो मेडल के करीब पहुंच गए थे, लेकिन लगता है क्वार्टर फाइनल का जो मैच था सारी ताकत वहां निकल गई उसके लड़की, तो आने वाला भविष्य उनका उज्ज्वल है और उम्मीद करते हैं इस साल लक्ष्य सेन बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे।
लेकिन निगाह तो सिंधु पर भी रहेगी क्योंकि सिंधु जो है विमेन्स सेक्शन में दुनिया की अभी भी शीर्ष खिलाड़ियों में शुमार है।
पर नहीं मालूम है ना, अभी शादी हुई है 2 दिन पहले, मतलब पिछले हफ्ते शादी हुई है, आज तिरुपति मंदिर कहीं गई थी, फोटो आई है उस तरह की, तो मालूम नहीं है कि वो अपना कब खेल शुरू करेंगे
जी। और क्रिकेट की तरफ अगर चलें तो सिडनी में शुक्रवार से शुरू होने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच से पहले आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों ने किरीबिली हाउस में न्यू ईयर रिसेप्शन में वहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान प्रधानमंत्री अल्बनीज ने 30 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की खूब तारीफ की। श्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया के नए टेस्ट खिलाड़ी सैम कॉन्स्टास के प्रदर्शन की भी सराहना की। 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला में 4 टेस्ट मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे है। और इधर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं। बुमराह को 907 रेटिंग अंक मिले हैं जिसके चलते उन्होंने रविचंद्रन अश्विन के 904 रेटिंग अंक को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही बुमराह भारत के सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल करने वाले टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं। स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में दिसंबर 2016 में 907 अंक हासिल किए थे। बल्लेबाजों में यशस्वी जायसवाल एक स्थान ऊपर अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 4th स्थान पर पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने 20 स्थान ऊपर जाकर 53वें स्थान पर जगह बना लिया। चलते चलते टिप्पणी, सिडनी में कितनी उम्मीदें आपको भारतीय टीम से?
मुझे लगता नहीं है, पूरा दम लगाना पड़ेगा तब आप ऑस्ट्रेलिया की बराबरी कर पाएंगे। जिस तरह से टॉप ऑर्डर लचर प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते।
तो रणबीर जी, अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया धर्मेंद्र।
दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।